बांग्लादेश बेतार का विदेश विभाग है। प्रस्तुत है आज का हिंदी में समाचार। आपके साथ मैं हूं भास्कर शरीफ चौधरी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने थाईलैंड से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश में अस्पतालों एवं चिकित्सा सुविधाओं में निवेश के मौकों का अन्वेषण करें। उन्होंने बांग्लादेश के विशेष अर्थनैतिक क्षेत्रों एवं हाईटेक पार्क्स में भी थाई निवेश का आह्वान किया है। शेख हसीना ने ये बातें बैंकॉक में थाई प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनके थाई संपदस्थ श्रेथा थाविसिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के पश्चात एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। बैठक के पश्चात दोनों प्रधानमंत्रियों के उपस्थिति में 5 द्विपक्षीय दस्तावेज यानी 1 समझौता, 3 एमओयू एवं 1 एलओआई साक्षरित किए गए। शेख हसीना ने कहा कि दोनों देशों के बीच की मैत्री हमारे इतिहास, साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपरा में गंभीर रूप से बंधे हुए है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच का उष्ण तथा हार्दिक संपर्क सहकारिता के बहुमुखी क्षेत्रों में क्रमवर्धमान है। द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी हितों के द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश थाईलैंड को दक्षिण पूर्वी एशिया के मजबूत अर्थनीति में एक अहम तथा बलिष्ठ साझेदार के रूप में देखता है। वाणिज्य सहकारिता में उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार के वर्तमान आकार को वर्धित करने के पदक्षेपों पर चर्चा किए एवं एक मजबूत द्विमुखी प्रवृद्धि प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। शेख हसीना ने थाई प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि बांग्लादेश में निवेश तथा व्यवसाय का सहजीकरण के लिए उपयुक्त पदक्षेप उठाए जाएंगे। ये उल्लेख करते हुए कि दोनों देशों ने सन 2024 के भीतर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमति दी थी, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधित वाणिज्य मंत्रालयों ने इस संदर्भ में एक एलओआई साक्षरित किया है। थाई एवं बांग्लादेशी अधिकारियों के बीच संपर्कों के सहजीकरण के लिए ढाका एवं बैंकॉक ने सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीसा सहित समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इसी बीच कूटनीतिक पासपोर्ट धारकों के लिए एक समझौता मौजूद है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लिए ऊर्जा सहकारिता में शामिल होने के लिए थाईलैंड एक संभाव्य साझेदार है। ऊर्जा सहकारिता के संभावनाओं को उजागर करने के लिए इस संदर्भ में एक एमओयू साक्षरित किए गए है। उन्होंने कहा कि शुल्क संबंधी मुद्दों में सहकारिता एवं द्विपक्षीय सहयोगिता के लिए एक तीसरा एमओयू साक्षरित किए गए है। लोगों के खाद्यान्न सुरक्षा निश्चित करने के लिए दोनों पक्षों ने कृषि एवं खाद्यान्न प्रक्रियाकरण क्षेत्रों पर सहभागिता के संभावनाओं को उजागर किया है। समुद्री संयोग के संदर्भ में शेख हसीना ने कहा कि दोनों पक्षों ने रानोंग बंदरगाह एवं चाटगांव बंदरगाह के बीच डायरेक्ट शिपिंग लाइन के संदर्भ में चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने थाई पक्ष को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों के विशेषायित विश्वविद्यालयों के बीच सहकारिता बढ़ाया जाए, विशेषकर कृषि, मत्स्य पालन एवं खाद्यान्न प्रक्रियाकरण में। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बिम्स्टेक रूपरेखा के अधीन क्षेत्रीय सहकारिता कर्मकांडों पर भी चर्चा किए हैं। उस सम्मेलन का वर्तमान चेयर एवं आयोजक के रूप में, जो इस वर्ष के अंतिम भाग में तय है, थाईलैंड बांग्लादेश को चेयरमैनशिप को हस्तांतर करेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सफर के महत्व को पुनर्व्यक्त किया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री थाविसिन को बांग्लादेश में एक वापसी सफर करने के लिए भी आमंत्रित किया। इससे पूर्व सरकारी सदन में पहुंचने पर शेख हसीना को प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन द्वारा स्वागत किया गया। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने थाई सशस्त्र वाहिनी द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का परिदर्शन किया। श्रेथा थाविसिन ने उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ शेख हसीना का परिचय करवाया और उसके पश्चात उन्होंने सरकारी सदन के अतिथि खाते में हस्ताक्षर किया। दोनों नेताओं ने वहां पर 1-to-1 बैठक किया। सरकारी सदन त्यागने से पहले शेख हसीना वहां पर आधिकारिक मध्याह्न भोजन में शामिल हुई। यहां पर उल्लेख किया जा सकता है कि अपने थाई समपदस्थ के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री शेख हसीना 6 दिवसीय सरकारी सफर पर थाईलैंड पहुंची है। आवामी लीग के साधारण संपादक और सड़क परिवहन एवं पुलों के लिए मंत्री ओबैदुल कादिर ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के विकास की सराहना करता है, जबकि बीएनपी इसे स्वीकार नहीं करती। उन्होंने शुक्रवार को राजधानी के धानमंडी में आवामी लीग अध्यक्ष के राजनीतिक कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। ओबैदुल कादिर ने कहा कि बीएनपी जानबूझकर देश के विकास का अनदेखी करके गिरी हुई मानसिकता का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा कि उस पार्टी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण से बांग्लादेश के विकास की वास्तविकता का एहसास होना चाहिए। आवामी लीग के साधारण संपादक ने कहा कि देश का लोकतंत्र बीएनपी के बिना ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी उपजिला चुनाव सफल होंगे, जबकि बीएनपी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी उपयोगिता खो देगी। देश में करदाता पहचान संख्या 3 धारकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अब ये 1,02,22,000 से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड NBR ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। सरकार ने कर दायरे को और विस्तृत बनाने के लिए कई पहल की है, जिसके लिए नए करदाताओं को कर दायरे में जोड़ा जा रहा है। NBR डाटा से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में देश में 3 धारकों की संख्या 90 लाख से अधिक थी। NBR अधिकारियों ने कहा कि 3 धारकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि लगभग 45 प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की रसीद दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में निगरानी को मजबूत किया गया है। आप हिंदी में समाचार सुन रहे हैं बांग्लादेश बेतार के विदेश विभाग से। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और जीत जीत यानी विन विन सहयोग को अमरीकी चीन संबंधों के लिए 3 मेजर प्रिंसिपल्स बताया है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत बीजिंग में मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति ने एंटनी ब्लिंकन से कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार होना चाहिए और दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग वी ने ब्लिंकन को चीन की रेड लाइंस पर कदम रखने के खिलाफ चेतावनी दी थी। तंजानिया में कई सप्ताह तक भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 155 लोगों की मौत हो गई और 236 अन्य घायल हो गए हैं, जबकि पूर्वी अफ्रीका में भारी बारिश जारी है। तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा ने संसद को बताया कि एल नीनो जलवायु पैटर्न ने मौजूदा बारिश के मौसम को और खराब कर दिया है, जिससे बाढ़ आ गई है और सड़कें, पुलों और रेल लाइंस नष्ट हो गए हैं। बारिश से 2 लाख से अधिक लोग और 1,000 घर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित स्कूलों को बंद कर दिया गया है और आपातकालीन सेवाएं बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचा रही है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शुक्रवार को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के परीक्षण की देखरेख की है। देश के सरकारी मीडिया ने बताया कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा रूस को हथियार आपूर्ति करने का आरोप लगाए जाने के बाद प्योंगयांग ने यह नवीनतम हथियार परीक्षण किया है। रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट लॉन्चर नई तकनीक के साथ उत्तर की सेनाओं के तोपखाने बल को मजबूत करने में एक रणनीतिक बदलाव लाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने देश के पहले परमाणु ट्रिगर अभ्यास की देखरेख की थी, जिसमें दुश्मनों को चेतावनी के रूप में परमाणु जवाबी हमला करना शामिल था। और इसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का हिंदी में समाचार। प्यारे श्रोताओं, आप हमारा ये समाचार हमारा वेबसाइट www.betar.gov.bd पर भी सुन सकते हैं। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।